श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि परमेश्वर आमोस के द्वारा पड़ोसी राज्यों को दंड देने की बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकें। आज जब हम आमोस नबी के द्वारा आपके वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हर एक आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोले और बातचीत करने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपका वचन जीवित है, सामर्थी है, जो आज भी हमसे बोलता और बातचीत करता है। आप हमें सिखाएं, समझाएं, ताकि प्रभु हम आप में होकर आपके तरीके से बढ़ने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। आप उन्हें शांति दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, ताकि आपका वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस समय हम में से हर एक को आप आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आमोस को भेजा कि वह जाकर इसराइल में भविष्यद्वाणी करे, और आमोस ने बुद्धिमानी का काम किया कि पहले उन पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध परमेश्वर के दन की घोषणा करे जो उनसे बैर रखते थे। अतः उसने सीरिया से आरंभ करके पलिस्तिया, फिनेके, एदोम, अमोन और मोआब के विरुद्ध परमेश्वर के दन की घोषणा की और यहूदा का भी उल्लेख किया, तथा अंत में आकर वह इसराइल के दन की घोषणा करता है। हम देखते हैं कि घोर अपराधों के लिए अमोन को भी दंड है। अब अमोन की बारी आती है। यह अमोनियों का देश है। आपने ध्यान दिया होगा कि भूगोल के अनुसार हम गोल चक्कर काट रहे हैं। सीरिया से आरंभ करके हम फिनेके, नीचे पलिस्तिया, तब दक्षिण में एदोम और अब अमोन की ओर आते हैं। परमेश्वर अमोनियों को क्यों दंड देना चाहता था? उनके घोर अपराध के कारण। तो आइए हम पढ़ें आमोस एक अध्याय उसके 13 पद को। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, अमोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि अमोन देश यर्दन नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। वे सीरिया के साथ मिलकर इसराइल के 2.5 गोत्रों से लड़ते रहते थे जो गिलाद प्रदेश में थे। वे अपनी सीमा बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने इस प्रकार के काम किए कि गर्भिणी स्त्रियों के पेट भी काट डाले। तब यहां पर आमोस कहता है एक अध्याय उसके 14 और 15 पद में, इसलिए मैं रब्बा के शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा, और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। मैं रब्बा के शहरपनाह में आग लगाऊंगा। रब्बा अमोनियों की राजधानी थी और एक बना नगर था। आज अमान नाम से यह नगर जाना जाता है, जो जॉर्डन की राजधानी है। आप वहां एक महान सभ्यता के खंडहर को देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वह कभी ध्वंस किया गया था। आज का जॉर्डन देश अमोन के मलबे पर बसा हुआ है। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 8 में उनके अपराध का वर्णन किया गया है, पद 12 और 13 में। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु अर्थात एलिशा से क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इसराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। मेरे प्रियो, हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलिशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, पर तू ऐसा ही करेगा क्योंकि तू कुत्ता है। उसने इसराइलियों के बच्चों को धरती पर पटक पटक कर मारा था और गर्भवती महिलाओं का पेट चीर दिया था। इसी अपराध का दंड परमेश्वर अमोन को देने वाला था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय दो में, जिसका विषय है मोआब, यहूदा और इसराइल को दंड। अमोस के पुस्तक दो अध्याय के एक पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मोआब के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। आमोस एक महान प्रचारक था, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। वह असामान्य अभिव्यक्तियों का काम में लेता था। मोआब के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण, यह उसकी अपनी शैली है, जिसका अर्थ है कि अनेक अपराध परंतु अपनी रीति के अनुसार वह एक ही अपराध का उल्लेख करता है जो मुख्य है। हम देखते हैं अनर्थ के लिए मोआब को दंड। लिखा है, मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। मोआब को उसकी बदला लेने की दुष्ट भावना के लिए दंड दिया जाएगा। मोआब ने अपने बैरी एदोम पर विजय प्राप्त की थी और उनके राजा को मार डाला था। मेरे मित्रों, आप सोचेंगे कि यही अंत था, परंतु नहीं, उन्होंने उसे जलाकर चूना बनाया था। मोआबी अपने बदले की भावना में सीमा पार कर गए थे। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें इसका दंड देगा। आमोस दो अध्याय उसके दो और तीन पद में आगे लिखा है, इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे, और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायी का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। लिखा है, योआब हुल्लड़ के शब्द होते होते मर जाएगा, अर्थात वे एक बड़े धमाके के साथ नष्ट हो जाएंगे। आगे चलकर नबूकदनेस्सर ने उन्हें पूरा का पूरा ध्वंस कर दिया था। तब से आज तक एक भी मोआबी नहीं देखा गया है। परंतु रोचक बात तो यह है कि इसी देश से एक सुशील एवं सुंदर कन्या रूत आई थी, जिसे बोआज ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। रूत प्रभु यीशु के वंशावली में है। मोआबी अन्य जाति देश था। उनका आरंभ भी उनके अंत के समान दुखद एवं त्रासदी पूर्ण था। रूत की कहानी स्पष्ट करती है कि यदि परमेश्वर को अवसर दिया जाए तो वह विश्वासी के जीवन में क्या कर सकता है। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं व्यवस्था को तुच्छ जानने के लिए यहूदा को दंड। आमोस भावी भविष्यद्वक्ताओं से विपरीत रीति को अपनाता है। वह पहले अन्य जातियों पर परमेश्वर के आने वाले दंड की भविष्यवाणी करता है, फिर इसराइल के लिए भविष्यवाणी करता है, क्योंकि इसराइल को परमेश्वर अधिक कठोर दंड देने जा रहा था, जिसका कारण स्पष्ट है। सौभाग्य जितना अधिक हो उतना ही अधिक उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। आपको जितना अधिक प्रकाशन प्राप्त होगा उतना ही अधिक आप परमेश्वर के समक्ष लेखादेही होंगे, जवाबदेही होंगे। मेरे विचार में हम उन लोगों से अधिक उत्तरदायी माने जाएंगे जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है या जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना है। हम अपने पड़ोसियों पर तो उंगली उठाते हैं, परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि हमें जिन्हें परमेश्वर के वचन का सौभाग्य प्राप्त है कितने बड़े उत्तरदायित्व का बोझ उठाए हुए हैं? क्या आज आपने अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुनाया है? मेरे प्रियो, हमारे पास बाइबल है। हम घमंड करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? क्या हम मनुष्यों में उसका सुसमाचार सुनाते हैं? पड़ोसी राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी करने के बाद अब आमोस परमेश्वर की प्रजा के पापों के विषय में चर्चा करता है और पहले अपने देश यहूदा का नाम लेता है। आइए हम पढ़ते हैं आमोस 2:4। यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं कि यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। परमेश्वर उनके सब पाप गिना सकता था, परंतु यहां उनका मुख्य अपराध है कि उन्होंने उसकी व्यवस्था को तुच्छ जाना। लिखा है, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना। आमोस बड़े संक्षेप में वही बात को कहता है जो यशाया, यर्मिया और यहेजकेल विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। परमेश्वर यहूदा को किस बात का दंड देगा? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना। यहूदा के पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, परंतु वे व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। यरूशलेम में तो परमेश्वर का मंदिर भी था, अतः परमेश्वर उन्हें व्यवस्था के अधीन ही दंड देगा। मेरे मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर के अन्य देशों को व्यवस्था के आधार पर दंड नहीं दिया? उन्हें परमेश्वर ने मनुष्य की समान दुष्टता के आधार पर दंड दिया था। उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें व्यवस्था के आधार पर दंड नहीं दिया गया था। आज आप अपने बारे में विचार करें। आपके पास में परमेश्वर का वचन है और दूसरों के पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप पर भी परमेश्वर का दंड उसी प्रकार से आएगा, मेरे ऊपर भी ऐसा ही दंड आएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से है। इसलिए आज मुझे और आपको इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। आमोस 2:5 में आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। आमोस भी अन्य भविष्यद्वक्ताओं के समान बार बार आग द्वारा दंड दिए जाने की बात कहता है। राजा नबूकदनेस्सर ने वास्तव में यरूशलेम को जलाकर राख कर दिया था। वहां केवल पत्थर ही पत्थर बचे थे, क्योंकि वह देश बहुत पथरीला है। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अनैतिकता और निंदा के लिए इसराइल को दंड। स्मरण रखें कि आमोस इसराइल की राजनगरी बेतेल में प्रचार कर रहा है। वह राजा के पवित्र स्थान में खड़ा है और मेरे विचार में जब जब वह बोलने के लिए खड़ा हुआ तब तब उसने किसी न किसी पड़ोसी राज्य की चर्चा की। उसने यहूदा की भी चर्चा की, अर्थात अब वह इसराइल की चर्चा करने जा रहा है। कुछ श्रोता यहूदा का नाम सुनकर छटपटाए अवश्य होंगे, परंतु ये दोनों राज्य अधिकतर लड़ते ही रहते थे। यहूदा के विरुद्ध भविष्यद्वाणी सुनकर उन्होंने आमीन अवश्य कहा होगा। यहूदा के दंड के बारे में सुनकर उन्हें प्रसन्नता हुई थी, परंतु अब उनकी बारी थी। 6 वह इसराइल के लिए भविष्यद्वाणी करेगा। वह नगर राजा का आराधना स्थल था। मेरे प्रियो, एक बार एक प्रचारक विभिन्न पापों के विरुद्ध में प्रचार कर रहा था। उसने शराब का नाम लिया तो वहां बैठी एक महिला ने आमीन कहा। उसने धूम्रपान का उल्लेख किया तो उस महिला ने फिर आमीन कहा, परंतु ज्यों ही वह तंबाकू खाने पर कहने लगा, त्यों ही उस महिला ने अपने मुंह का तंबाकू दूसरे गाल में कर लिया और बोली, अब यह प्रचार करना छोड़कर व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। जी हाँ, इसी प्रकार आमोस भी उस सभा के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा है। वह उनके पाप उजागर करेगा, उनके पाप की व्यवस्था खोलेगा। और उनके पाप ये थे कि व्यवस्था की बातों को वे नहीं मान रहे थे। परमेश्वर की आज्ञाओं को वे जानते थे, परंतु सुनिए कि अब आमोस क्या कहता है उनके बारे में। आमोस 2:6 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। यहोवा यूं कहता है, मैं सच कहता हूं कि मैंने सदैव यही सोचा है कि मुझे प्रचार मंच से प्रवचन का अधिकार नहीं है, जब तक कि मैं यह न कहूं यहोवा यूं कहता है। अर्थात प्रचार मंच की सेवा परमेश्वर के वचन के आधार पर ही होना चाहिए। लिखा है, इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा। उनके पाप इससे अधिक हैं, जिनका उल्लेख आमोस बाद में करेगा। वह मूसा की व्यवस्था का उल्लेख करेगा, 10 आज्ञाओं का नहीं, जैसा उसने यहूदा के विषय में किया था। मूसा की व्यवस्था मनुष्य के दैनिक जीवन से संबंधित थी। यहां पर हम पढ़ते हैं, उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। उनके पास मूसा की व्यवस्था तो थी, परंतु उनका आचरण पड़ोसी जातियों के समान ही था, जिन पापों के कारण परमेश्वर ने अन्य जातियों को प्रतिज्ञा के देश से निकाल डाला था। वही पाप इसराइल भी कर रहा था। सबसे पहले वह गरीबों पर अत्याचार की चर्चा करता है। आमोस गरीबों के विषय में बहुत कहता है। आमोस 4:1 उसके 1 में हम पढ़ते हैं, आमोस 4:1 में लिखा है, हे बाशान की गायों, यह वचन सुनो, जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। और तब आगे 5:11 में वह कहता है, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते हो। मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ताओं में मैं बार बार यही देखता हूं कि इस पृथ्वी पर गरीब को न तो न्याय मिलेगा और न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, जब तक कि प्रभु राज न आ जाए। गरीब की आशा केवल प्रभु यीशु है। राजनीतिक दल गरीबों का भला करने का दावा तो करते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। सच तो यह है कि ये नेता धनवान हैं और गरीबी को नहीं जानते। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि एक मनुष्य ऐसा है जो एक दिन गरीब को न्याय देगा, और वह प्रभु यीशु है। परमेश्वर गरीबों के साथ अनुचित व्यवहार करने के लिए किसी भी देश को दंड देगा। उसने इस संबंध में अनेक नियम स्थापित किए हैं, परंतु मैं केवल एक ही का उल्लेख करूंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16:19 में लिखा है, तुम न्याय न बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने गरीब की रक्षा के लिए यह नियम बनाया था। उस युग में भी घूस लेकर और देकर निर्दोष को दोषी ठहराया जा रहा था और दोषी ठहराया भी जा सकता था। यह अभ्यास पुराने फैशन का नहीं होता है, शेष सब कुछ पुराना होता है। आज जब पैसा निर्णायक है तो गरीब को न्याय कैसे मिले? आमोस एक विशेष समस्या का उल्लेख कर रहा था, जब एक जोड़ी जूता न्याय बिगाड़कर गरीब को कष्ट देता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और वह गरीबों का भी न्याय करता है, और इस रीति से हम देखते हैं कि वह एक दिन उनके जीवन में वह शांति और आनंद भरेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही परमेश्वर के न्याय के बारे में जाना है, सीखा है, और आप अपने जीवन में अवश्य ही भला निर्णय लेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।